जैसे ही आयशा को लगने लगा कि उसके बच्चे पर सवाल खड़े हो रहे थे, उसने जानबूझकर अपना मिसकैरेज कर लिया और सारा इल्ज़ाम इशिका पर डाल दिया। पूरी राजवंश फैमिली इशिका के पीछे पड़ी हुई थी। एक बार फिर राजवंश फैमिली अभिमन्यु को सीईओ की पोजीशन छोड़ने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। तभी इशिका ने बच्चों के डीएनए टेस्ट के बारे में बताया। अभी भी अभिमन्यु और इशिका का यही कहना था कि आयशा के पेट में पल रहा बच्चा नक्श का नहीं था। ये बात सुनते ही आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो मदद के लिए किसी को मैसेज करने लगी। इस बीच अरमान वहां पर पहुंचा। वो इशिका की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, मेरे चाचू यही चाहते हैं कि राधिका सिंधानिया और उनकी बेटी को प्रोटेक्ट किया जाए, जबकि तुमने उनके साथ इतना कुछ कर दिया। अब वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, फिर तुम्हारा पति भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। अरमान के वहां आने पर आयशा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी अभिमन्यु इशिका के सामने आया और भौंहें उठाकर बोला, ओ रियली, सबक सिखाना तो दूर की बात है, मेरे होते हुए कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता है। देखते हैं फिर यहाँ किसकी जीत होती है, अरमान ने जवाब दिया और फिर अपने गार्ड्स को इशिका को पकड़कर लाने का इशारा किया। जैसे ही गार्ड्स कुछ कदम आगे बढ़े, अभिमन्यु के गार्ड बीच में आ गए थे और उन्हें पकड़ लिया था। अभिमन्यु के गार्ड स्पेशल फोर्स से जुड़े हुए थे, इस वजह से उन्हें 2 मिनट नहीं लगी उन्हें बाहर फेंकने में। अभिमन्यु ने गुस्से से अरमान की तरफ देखकर कहा, चलो अब निकलो यहाँ से, जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इशिका से कोई बात नहीं करेगा। अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे फिर से मिसेस सिंघानिया के कमरे में ले जाने लगा। उनके पीछे गार्ड्स भी आ रहे थे। इशिका को वहां कमरे में छोड़ने के बाद अभिमन्यु ने कहा, राजवंश फैमिली और सिंघानिया फैमिली में से कोई भी इंसान इस कमरे में नहीं आ पाएगा और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं बाहर ही हूँ। इशिका ने हल्का मुस्कुराते हुए हामी भरी और धीरे से थैंक्स कहा। वो वहां पर बैठ गई थी और डीएनए रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगी। वहीं अभिमन्यु कमरे से बाहर निकला तो उसे अरमान मिल गया। अरमान ने अभिमन्यु से कहा, तुम चाचू का गुस्सा जानते हो ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयशा के पेट में पल रहा बच्चा किसी का भी हो, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि इस नाजायज लड़की ने मिसेस सिंघानिया की बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं उनसे अपने आप बात कर लूंगा, अभिमन्यु ने शांति से कहा। अच्छी बात है, वैसे अपनी पत्नी के हिस्से का गुस्सा तुम भुगतने के लिए तैयार रहना, जब भी वो लड़की उनके सामने आएगी वो उनका मुंह तोड़ देंगी, अरमान ने कहा। अभिमन्यु ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया और केशव से बात करने के लिए जाने लगा। वहीं आयशा इस वक्त कमरे में उर्वशी के साथ थी, वहीं पास में नक्श भी खड़ा था। उर्वशी ने आयशा की तरफ घूर कर देखा और कहा, क्या सच में वो बच्चा नक्श का ही था? ये आप कैसी बात कर रही हैं मॉम, मेरी लाइफ में नक्श के अलावा और कोई लड़का नहीं था, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, आयशा ने रोते हुए कहा। उसका साथ देते हुए नक्श ने कहा, रियली मॉम, आप भी इशिका और चाचू की बातों में आ गई, वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हमारा बच्चा पैदा हो जाता तो उनके हिस्से के कुछ शेयर्स उनके पास चले जाते, खुद तो बच्चा पैदा कर नहीं सकते और हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उर्वशी ने सिर हिलाया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तुम्हारे सपोर्ट में कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन अगर वो बच्चा नक्श का नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हें नक्श को तलाक भी देना होगा। इतना कहने के बाद उर्वशी वहां से चली गई। आयशा को डर लग रहा था क्योंकि वो जानती थी कि डीएनए रिपोर्ट में सारा सच सामने आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब अभिमन्यु नीचे केशव से मिलने पहुंचा तो उसके साथ अरमान भी गया था। अभिमन्यु को देखते ही केशव खड़ा हुआ और सख्ती से बोला, तो तुम यहाँ उस नाजायज लड़की के बचाव के लिए आए हो, तुम मुझे उसके पक्ष में कितनी भी बातें बोल दो, लेकिन जिस दिन वो लड़की मेरे सामने आएगी, आई बेट यू, मैं उसे उसके कदमों पर चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा, आयशा के मिसकैरेज में उसकी कोई गलती नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़की एक बोझ है और उसी की वजह से राधिका की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, केशव ने जवाब दिया। अभिमन्यु आगे बोला, लेकिन मिसेस सिंघानिया इशिका को पसंद करती है, आप चाहो तो अरमान से पूछ सकते हो। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? कोई भी औरत अपने पति की नाजायज औलाद को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, केशव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। इस बार केशव ने जो पॉइंट रखा था वो बिल्कुल सही था, तो अभिमन्यु कुछ कहने के लायक नहीं रहा। वो जानता था कि केशव काफी सख्त मिजाज है और दूसरों को सजा देने में यकीन करते हैं। अगर वो इशिका को सजा देने के बारे में कह रहे हैं तो जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। अभिमन्यु ने कुछ पल रुककर धीरे से कहा, याद है हम न्यूयॉर्क में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप चाहो तो वो प्रोजेक्ट रख सकते हो, मुझे कोई प्रोजेक्ट या पैसा खरीद नहीं सकता है, तुम जानते हो मेरे इरादे अटल होते हैं, केशव ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने ये ऑफर इसलिए रखा था क्योंकि केशव काफी टाइम से उस डील को हासिल करना चाहते थे, वो बस केशव को ट्राई कर रहा था और अभिमन्यु इसमें पूरी तरह फेल हो गया। अभिमन्यु को चुप देखकर केशव ने कहा, एक तरीका है जिससे तुम अपनी पत्नी को बचा सकते हो। अभिमन्यु ने उम्मीद भरी निगाहों से केशव की तरफ देखा तो वो बोला, उसे तलाक दो और उस लड़की से शादी करो जिसे सिंघानिया फैमिली ने गोद लिया है। मैं हमेशा से तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं थी। अगर मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें किडनैप करके भी उससे तुम्हारी शादी करवा देता। अगर तुम ऐसा करो तो मैं उसे छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। सोचिएगा भी मत कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं प्यार करता हूँ उससे, अभिमन्यु ने हल्के गुस्से में कहा। फिर तो तुम्हारी पत्नी को मुझे कोई नहीं बचा सकता, केशव ने जवाब दिया। अभिमन्यु और केशव के बीच सिचुएशन कॉम्प्लिकेटिव होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे के मुंह पर पंच मार देंगे। तभी अरमान बीच में आया और जबरदस्ती हंसते हुए बोला, हाँ भी कौन सी बातों को लेकर बैठ गए। अच्छा अभिमन्यु, तुम एक औरत को ढूंढ रहे थे क्या? तुम वो फोटो चाचू को दिखा सकते हो, हो सकता है उस औरत को चाचू पहचानते हो। अरमान अपनी तरफ से माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बीच में इस तरह बोलने पर अभिमन्यु और केशव एक साथ चिल्लाकर बोले, जस्ट गेट लॉस्ट। अरमान घबराकर एक कदम पीछे हुआ और बोला, अरे वाह, आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हो, एक साथ एक ही बात बोल रहे हो, तो फिर झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। अभिमन्यु, तुम चाचू की बात मानकर उस लड़की को तलाक क्यों नहीं दे देते? ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने बोल दिया मैं उसे प्यार करता हूँ और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, अभिमन्यु ने सख्ती से जवाब दिया। ऊपर ऋषिका मिसेस सिंघानिया के कमरे में खड़ी खिड़की से उन लोगों को देख रही थी जो केशव की कार के पास खड़े होकर बहस कर रहे थे। ऋषिका खिड़की के पास खड़ी ही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो मालविका खड़ी थी और उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, ऋषिका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयशा के साथ ये सब करने की? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आदर्श ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा और कहा, मालविका बाहर निकलो यहाँ से। मालविका ने अब चिल्लाना बंद कर दिया था, लेकिन वो बाहर नहीं गई। वो ऋषिका के पास आई और उसकी बाजू पकड़कर बोली, तुमने आयशा का मिसकैरेज करवा दिया, तुम घटिया लड़की हो, एक माह से उसका बच्चा छीन लिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैंने डॉक्टर से बात करनी है, थोड़ी देर बाद में तुम्हारी सर्जरी होने वाली है, तुम कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाओगी।
ऋषिका को मालविका की सोच पर हैरानी हो रही थी। वो उसकी माँ होने का दावा कर रही थी और अपनी ही बेटी की सर्जरी करवा रही थी ताकि वो फ्यूचर में बच्चा पैदा ना कर पाए। ऋषिका ने मालविका को झटक कर दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बाहर निकलो यहाँ से, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। और होती कौन हो तुम मुझे सजा देने वाली? तुमने गलत किया है तो उसकी सजा मिलेगी ही, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम चाहे रिश्तों को भुला दो, लेकिन तुम्हारी रगों में जो खून है वो मेरा ही है, उसे तुम निकाल कर नहीं फेंक सकती, मालविका ने चिल्ला कर कहा। वहीं उसके चिल्लाने की आवाज जब आयशा के कानों में पड़ी तो वो जल्दी से खड़ी हुई। उसे पास वाले रूम में ही रखा गया था। वो नक्श से बोली, मेरी मॉम के साथ कुछ हो रहा है, मुझे वहां जाना है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, नक्श ने जवाब दिया और फिर आयशा को व्हीलचेयर पर बैठाया। वो उसे लेकर कमरे में पहुंचा तो वहां मालविका और ऋषिका के बीच बहस चल रही थी। आयशा कमरे के अंदर आते हुए मासूम बनते हुए बोली, मालविका आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? और प्लीज इस कमरे में शोर मत कीजिए, मेरी मॉम बेहोश है। ऋषिका जैसी भी है लेकिन मेरी बहन है। हाँ, उससे गलती हो गई जो उसने मुझे धक्का दिया और मैंने अपने बच्चों को खो दिया। मालविका आयशा के पास आई और उसके कदमों में बैठते हुए बोली, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैंने इसके लिए सजा भी डिसाइड कर ली है। मालविका के कहते ही ऋषिका के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी, जैसे अभिमन्यु के होते हुए मालविका या कोई और उसे हाथ भी लगा सकता था। ऋषिका के चेहरे पर स्माइल देखकर नक्श ने कहा, तुम अभी भी स्माइल कर रही हो? ऋषिका तुमने हमारे बच्चे को मारा है और इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है नक्श, और वो तो रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि बच्चा किसका था, ऋषिका ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इसी बीच पृथ्वी जल्दी से कमरे में आया और ऋषिका से बोला, मिसेज राजवंश, सर ने जो डीएनए टेस्ट करवाया था उसका रिजल्ट आ गया है। इतना कहकर पृथ्वी ने ऋषिका के हाथ में डीएनए रिपोर्ट पकड़ा दी थी। ऋषिका ने उसे पढ़ा, जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था रिपोर्ट मैच नहीं कर रही थी और रिपोर्ट से ये साफ हो गया था कि वो नक्श का बच्चा नहीं है। ऋषिका के चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी, जिसे देखकर नक्श ने कहा, इस तरह मुस्कुराना बंद करो और रिपोर्ट मुझे देखने दो। जैसे ही नक्श ने रिपोर्ट लेना चाहा, इसी बीच मालविका ने ऋषिका के हाथ से रिपोर्ट को छीना और उसे फाड़कर उसके टुकड़ों को चबाने लगी। नक्श ने गुस्से में मालविका पर चिल्लाकर बोला, ये क्या किया आपने? जल्दी इसे बाहर निकालिए, मुझे रिपोर्ट देखनी है। हाँ मालविका आंटी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसी से मैं अपने सच को साबित कर सकती हूँ, आयशा ने मासूम बनते हुए कहा। मालविका रिपोर्ट के टुकड़ों को निगलते हुए बोली, अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोग मेरी बेटी को जेल भेजना चाहते हो, उसको बचाने के लिए मैंने ये सब किया। मालविका यहाँ ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे वो ऋषिका को बचाने के लिए आई है, तो आयशा मन ही मन मुस्कुराने लगी। आखिर इसी चीज के लिए तो उसने मालविका को वहां बुलाया था। मालविका के इस हरकत पर पृथ्वी और ऋषिका उसकी तरफ बोलियत भरे लहजे में देख रहे थे। उनकी खुशी चंद पलों की थी, क्योंकि ऋषिका ने कहा, ये तो रिपोर्ट की बस एक कॉपी थी। पृथ्वी आप ऐसा कीजिए कि मुझे दूसरी कॉपी लाकर दे दीजिए। हाँ मैं बस 5 मिनट दीजिए, पृथ्वी ने जवाब दिया और बाहर जाने लगा। इस बार मालविका कोई ऐसी हरकत ना करे इसलिए नक्श उसके साथ जा रहा था। वहीं उनके जाते ही आयशा आगे आई और उसने हाथ जोड़ लिए थे। वो ऋषिका से बोली, तुम क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें पता है वो बच्चा नक्श का नहीं है, फिर तुम इस बात को साबित करने पर क्यों तुली हुई हो? मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इशिका प्लीज सबको बता दो कि ये तुम्हारी गलतफहमी थी, आगे मैं सब संभाल लूंगी। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। आयशा का भांडा फूटने लगा तो वो इशिका के सामने गिड़गिड़ाने लगी। वहीं मालविका भी हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या ये बच्चा सच में नक्श का नहीं था? आयशा ने नामे सिर हिला दिया। फिर वो इशिका से बोली, तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज रिपोर्ट सबके सामने मत आने दो। मालविका ने आयशा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आयशा ठीक कह रही है, इन्होंने आज तक तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आज पहली बार इन्होंने तुमसे कुछ मांगा है तो तुम मना नहीं करोगी? इशिका ने उनकी नजरों से बचकर अपने पॉकेट में हाथ डाला और पेन के ऊपर का एक बटन दबा दिया था। वो एक रिकॉर्डिंग पेन था। इशिका ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर बदले में तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा है तो तुमने नक्श से शादी क्यों की? आयशा की ऐसी हालत नहीं थी कि वो इशिका के साथ किसी भी तरह की बहस करे। वो सीधा जवाब देते हुए बोली, क्योंकि नक्श मेरा ऑब्सेशन था, वो तुम्हें पसंद करता था, मुझे किसी भी हाल में उसे अपना बनाना था और राजवंश खानदान की बहू बनना था। मुझे नहीं पता था कि उसकी फैमिली के पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, वरना उस बेवकूफ से मैं कभी शादी नहीं करती। तो फिर ये बच्चा किसका है? इशिका ने पूछा, जबकि सच वो जानती थी, ये बच्चा माहिर का है। देखो मैं उससे प्यार नहीं करती, बस टाइम पास के लिए उसके क्लोज गई थी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वैसे भी मुझे इस बच्चे से पीछा छुड़ाना था जो मैंने छुड़ा लिया, अब प्लीज मेरी हेल्प करो। आयशा ने सब कुछ बताते हुए कहा। बच्चा माहिर का है, ये सुनकर मालविका को झटका लगा। माहिर उसका भाई था, पर मालविका की नजरों में आयशा इस सच से अनजान थी। इशिका ने अपना मोबाइल निकाला और उस रिकॉर्डिंग को पेन से कनेक्ट करके फोन में ट्रांसफर किया। उसने फिर उस रिकॉर्डिंग को किसी को भेज दिया था। आयशा और मालविका को गुस्सा आ रहा था क्योंकि यहाँ ऐसा मदद मांगते हुए इशिका को इतना सब कुछ बता रही थी जबकि वो अपने मोबाइल में लगी हुई थी। ये रिकॉर्डिंग सीधा क्रिस्टल के पास पहुंची जो माहिर को सुना रही थी। जैसे ही उसने आयशा की बातों को सुना और उसे पता चला कि आयशा ने उसके बच्चे को गिरा दिया है, तो उसके चेहरे के भाव सर्द होने लगे। अब आयशा और माहिर के बीच ऐसा कोई रिश्ता या कड़ी नहीं बची थी जिसके बाद वो आयशा का फेवर करे।